Good evening, listeners, and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program which gives you a complete update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual funds and related matters. You can call us on 2331-4444-2342-1050, and our third dedicated line is 2331-0464. And if you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. I'm S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. Good evening, Subodh.
Namaskar, Ranga, aur namaskar, Shrotaon. Karobari khabron ke saath Market Mantra hazir hai. Aaj Ravivar hai, aur har Ravivar ki tarah aaj bhi hum mutual funds se jude aapke sawalon ke jawab denge. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444-2342-1050 और 2331-0464. दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट आकार रस्तोगी. आकार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
थैंक यू.
पहले हेडलाइंस के साथ रंगा.
The top stories. GST Council recommends uniform rates of 12% on all steel, iron and aluminium milk cans. Also no GST on some common man services provided by IRCTC. Foreign investors infused more than 12,000 crore rupees in Indian equities till the third week of June. And Bureau of Indian Standards introduces two new standards to enhance the safety of electric vehicles.
जीएसटी काउंसिल ने लोहे और इस्पात की सभी चीजों और एल्यूमिनियम से बने दूध के कैंस पर 12% के समान दर की सिफारिश की. आईआरसीटीसी द्वारा आम लोगों को दी जाने वाली कुछ सुविधाओं पर जीएसटी हटाया. जून के तीसरे सप्ताह तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने विद्युत वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए दो नए मानकों की घोषणा की.
And now for all the details and good news on taxation front. The GST Council has recommended a uniform rate of 12% GST on all steel, iron and aluminium milk cans. Finance Minister Nirmala Sitharaman speaking to the media after the 53rd GST Council meeting held yesterday in New Delhi also announced that services provided by the Indian Railways to the common man, including the sale of platform tickets, facility of retiring rooms and waiting rooms and battery-operated car services will not attract any GST. She said in a move that will benefit the apple growers of Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir, the council has recommended a uniform GST rate of 12% on all carton boxes and cases of both corrugated and non-corrugated paper or paperboard. Ms. Sitharaman also said there is going to be a rollout of biometric-based Aadhaar authentication on an all-India basis. This will help the government combat fraudulent input tax credit claims made through fake invoices. The minister said that to help small taxpayers, the council has recommended extending the time limit to furnish details and returns in the form GSTR4 from the 30th of April to 30th of June. The minister also informed that the GST Council has recommended waiving interest and penalties for demand notices that have been issued under Section 73 of the GST Act, including cases not involving fraud, suppression or misstatements. She said that for all those notices issued under Section 73 for the fiscal years 2017-18, 2018-19 and 2019-20, the council has recommended waiving of interest and penalties on the demand notices that have been served.
आइए पहले श्रोता के पास चलते हैं जो इंतजार कर रहे हैं दिल्ली से. वरुण हमारे साथ हैं. वरुण, स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
हेलो, हाँ सर नमस्कार। सर मुझे ये पूछना है, अभी जैसे मार्केट पूरा लॉन्ग अभी ऑल टाइम हाई है और हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में सब कहता है जो मार्केट गिरेगा, तो हम इस गिरावट से कैसे बच सकता है, किस हद तक बच सकता है, ये मेरा को पूछना था सर। धन्यवाद।
देखिए जो मार्केट होती है, पहली बात अगर आप इक्विटीज में आपने निवेश करा हुआ है और आगे आने वाले दिनों में अगर मार्केट गिरता है तो कोई भी निवेशक उससे नहीं बच सकता। हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि उसका जो इम्पैक्ट है हमारे पोर्टफोलियो पे उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। अब वो रिड्यूस करने के लिए देखिए बहुत जरूरी होता है कि हम लोग एक अपना असेट एलोकेशन मेंटेन करके चले। अब मार्केट गिरेगा या नहीं गिरेगा या कितना गिरेगा, ये कोई भी इसकी जानकारी अगर कोई भी मतलब हम लोग एक खाली एस्टीमेट लगा सकते हैं, लेकिन वाकई में वैसा होता है कि नहीं उसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। तो मान लीजिए अगर आप ये सोचते हैं कि मार्केट गिरेगा ही गिरेगा और आप अपने सारे पैसे निकाल लेते हैं उस चिंता की वजह से, लेकिन मार्केट नहीं गिरता, वो ऊपर ही जाते रहता है, तो आपको कुछ समय के बाद इस बात का अफसोस होएगा कि ये वाला जो एक प्रॉफिट का अपॉर्चुनिटी थी जो अभी से लेकर आगे आने वाले कुछ दिनों तक की, वो आपने खो दी। वहीं अगर आप ये सोचते हैं कि आप मार्केट में बने रहे, भले ही आपको थोड़े दिनों में पैसे चाहिए थे सोच के कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, लेकिन मार्केट नीचे गिर जाता है, तो आपको वहां पे एक अलग तरीके का अफसोस होगा। तो इन चीजों के बचने के लिए अच्छा रहता है कि आप एक अपना असेट एलोकेशन मेंटेन करें।
जी आप आकार जैसा आप अभी बता रहे थे और पहले भी आपने भी बताया और बाकी एक्सपर्ट्स भी बताते हैं कि जो जिस तरह की बात कर रहे हैं कि मार्केट की गिरावट से बचने के लिए या उतार चढ़ाव का असर ना हो कि आप एकमुश्त निवेश ना करें, आप छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में अपने पैसे लगाएं और नियमित रूप से निवेश जारी रखें।
बिल्कुल,
क्योंकि बाजार को टाइम करने की कोशिश ना करें।
बिल्कुल सही
जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? और
बाकी मैं यही कहना चाहूंगा कि असेट एलोकेशन यानी कि एक इक्विटी डेट का मिक्स आप मेंटेन रखें और उसमें देखें कि आपको कितना इक्विटी में आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से जरूरी है और कितना डेट में, और वो मेंटेन करके रखें।
राइट, लेट्स मूव ऑन एंड टेक अ नेक्स्ट कॉलर। वी हैव विकास गुप्ता ज्वाइनिंग अस फ्रॉम दिल्ली। गुड इवनिंग विकास एंड वेलकम टू द प्रोग्राम।
वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द रिस्पेक्टिव डिग्निटरीज।
या
सर, मेरा क्वेश्चन म्यूचुअल फंड से रिगार्डिंग है कि जैसे एक नया म्यूचुअल फंड आया है जो कहते हैं विजय सेल्स फाइनेंस, तो क्या अभी इसमें जैसे नया है तो क्या ये इसमें अभी पैसे लगाना ठीक होगा या फिर अभी हमें रुकना चाहिए, एक तो ये जानकारी लेनी है। दूसरा कि हमें जैसे म्यूचुअल फंड में कहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो क्या ऐसा भी कर सकते हैं हम 6-6 महीने बाद पैसे निकालकर हम उसे री इन्वेस्ट कर सकें किसी अदर स्कीम्स में?
राइट, विकास एंड आकार ऑल्सो, इट सीम्स विजय सेल्स इज अ न्यू स्टॉक विच इज बीन लिस्टेड बट नॉट अ म्यूचुअल फंड।
राइट।
और अगर नए फंड एनएफओज की भी बात करें तो उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं शायद।
बिल्कुल। सो लेकिन एनएफओज के अलावा जो एक आपका दूसरा सवाल था कि 6-6 महीने में अगर लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड भी है तो क्या हम 6-6 महीने में निकाल के दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो मैं कहना चाहूंगा कि देखिए वो सही नहीं रहेगा। जब भी आप एक यहां पे जैसे कि अभी हम पहले बात कर रहे थे, अगर आप कुछ भी ऐसा सोचते हैं कि आप 6 महीने के बाद पहले निकाल ले फिर री इन्वेस्ट कर दे, तो एक तरीके से टाइमिंग द मार्केट हो जाता है जो कि करना सही नहीं रहता। तो आप एक लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करिए, एसआईपी के थ्रू निवेश करिए और इक्विटी में जब भी निवेश कर रहे तो कम से कम 5 साल का अपना होराइजन रखिए।
या बट आकार, एज ए स्ट्रैटेजी, एज आर अर्लियर कॉलर ऑल्सो स्पोक अबाउट, एज ए स्ट्रैटेजी व्हेन यू थिंक दैट मार्केट्स हैव ऑलमोस्ट हिट अ यू नो समिट, वुड इट बी प्रूडेंट टू काइंड ऑफ एनकैश से यू नो 20-25% 30% ऑफ योर पोर्टफोलियो?
See, for that purpose, what I would suggest is, it is ideal to maintain an asset allocation of say around 70-30 if you are a long-term investor and do not need that money say in the nearby future and the horizon is still 5 years to go at least. So, by maintaining an asset allocation of 70-30, what would happen is, like you just mentioned, would it be good to incur say 20-30% of the money? So, if your 70% of equity because of the market increase has already gone to 90%, then to maintain that asset allocation, you would be automatically withdrawing 20% of the money to restore the original allocation of 70%. So that way you would be automatically booking profit in a scientific way and at the same time taking some exposure in debt or some kind of a stagnant asset class. विच इज मच मोर स्टेबल।
जी आकार, में पढ़ रहा था कुछ समय पहले कि अभी बाजार की जो अभी हालत है, इसमें कुछ एक्सपर्ट्स की राय है कि अगर एक साल के अंदर आपको उन पैसों की जरूरत है इन्वेस्टेड मनी की तो निकाल लीजिए, लेकिन अगर तीन साल तक नहीं है जरूरत तो आप रहने दीजिए।
बिल्कुल, देखिए
आप क्या कहना चाहेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर कुछ ऐसा है कि आपका इक्विटी में कोई सा पैसा निवेश ऑलरेडी आपने करा हुआ है और अभी कुछ महीनों में या
उसकी जरूरत
है तो आप आखिरी मिनट तक उसकी वेट ना करिए, बल्कि सही तरीका तो ये होता कि आप कुछ समय पहले से ही, लगभग एक साल या डेढ़ साल पहले से ही सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए उसको विड्रॉ करना शुरू कर देते। जैसे SWP है वो बिल्कुल ही SIP का ऑपोजिट है। जैसे SIP से हम लोग एक फेज मैनर में इन्वेस्ट करते हैं, SWP से हम लोग फेज मैनर में विड्रॉ करते हैं, जिससे कि एक मार्केट लो पे एग्जिट करने का रिस्क रिड्यूस हो जाता है।
जी अगले कॉलर है मथुरा से तरुण बंसल। तरुण स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
सर नमस्कार, मैं तरुण बंसल बोल रहा हूँ।
जी नमस्कार, सवाल पूछे।
पहले तो ये मैं बताना चाहता हूँ, मेरा एक क्वांट में मिड कैप में इन्वेस्टमेंट है, तो किसी पर्सन ने मुझे ये एडवाइस दी कि कुछ समय के लिए मिड कैप से हटा करके और IT सेक्टर में डाल दो, क्योंकि मिड कैप में अब कुछ करेक्शन होने वाला है, मतलब शेयर मार्केट में तो नीचे जा सकता है, तो ये क्या सही स्टेप है या नहीं?
यस आकाश, देखिए क्वांट मिड कैप और दूसरा जो आप IT सेक्टर का फंड बता रहे हैं, ये दोनों ही अलग अलग तरीके के फंड है। क्वांट मिड कैप हालांकि भले ही मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, बट वो एक डाइवर्सिफाइड फंड है। वहीं जो एक IT फंड है वो केवल और केवल उन्हीं कंपनीज में निवेश करता है जो कि एक IT सेक्टर को बिलोंग करती है। आमतौर पे ऐसे जो फंड्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर सेक्टर में की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, वो ज्यादा रिस्की रहते हैं, वो आपको ज्यादा मुनाफा देने की क्षमता भी रखते हैं और वहीं वहां पे आपको ज्यादा लॉस होने का भी डर हो सकता है, वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो सकते हैं। तो एक जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको एक सेक्टोरल फंड से दूर रहना चाहिए। और रही बात कि अगर आप देखें जो ये डाइवर्सिफाइड फंड्स होते हैं, इनका भी कुछ पोर्शन एक IT कंपनी में जरूर निवेश रहता है, तो आपको वहां से तो एक्सपोजर मिल ही रहा है, तो आपको एक उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
जी और आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं तो फिर सीधे शेयर मार्केट में जाएं और सीधे IT की किसी कंपनी में लगाएं।
हाँ आप वो भी कर सकते हैं, बट तब भी वो मैं कहूंगा कि फिर एक वो IT म्यूचुअल फंड से एक और स्टेप अहेड होएगा।
जी
क्योंकि उसमें आपको एक स्टॉक्स को रिसर्च करने की स्किल की और एक अलग आवश्यकता और जानकारी होनी चाहिए।
जी वैसे एक आम सलाह, अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें, हमारा कार्यक्रम म्यूचुअल फंड पे है, तो कि आप सेक्टोरल फंड्स से भी थोड़ी दूरी बनाकर रखें।
बिल्कुल बिल्कुल।
ओके फाइन, लेट्स गो अक्रॉस टू महाराष्ट्र where we have Vijay joining us on the program. Good evening and welcome to Market Mantra.
Good evening, sir. My name is Vijay.
Yeah, go ahead.
And I want to know this ICICI Prudential Regular Saving Fund Growth and ICICI Prudential Retirement Fund. They have not been performing very well. So can I, change over to multi-asset fund and India Opportunity Fund instead of these two?
Yes, Akash.
देखिए जो ICICI रेगुलर सेविंग्स फंड आपने बताया वो एक हमारा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है। अभी कुछ समय से पिछले एक साल में मैं कहूंगा कि वो एक एवरेज परफॉर्म कर रहा है, बट उस फंड में ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है, आप उसके साथ अपना निवेश जारी रख सकते हैं। बाकी यहां पे जो मेरे को लग रहा है एक चीज आपके लिए जानना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि आपने बताया अपॉर्चुनिटीज फंड और ये था एक रेगुलर सेविंग्स फंड, ये दोनों जो फंड्स हैं ये दोनों अलग अलग तरीके के फंड हैं। अभी जिसमें आपका निवेश है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, वो आमतौर पे अपना कुछ बहुत ही छोटा सा हिस्सा 20-25% ही आपका इक्विटी में निवेश करता है, बाकी का डेट में करता है, जिसके वजह से हो सकता है कि आपको कहीं पे इस चीज की एक फीलिंग आ रही हो कि ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा, क्योंकि आप बाकी के इक्विटी फंड्स को इसके कंपैरिजन में देखेंगे तो आजकल क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर है तो बहुत ज्यादा रिटर्न होगा। तो ये वाला जो एक फंड है इसका जो स्ट्रक्चर है ये है ही एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए जो कि 20-25% ही इक्विटी में करता है, तो ये आपको रिटर्न देगा लेकिन थोड़े रिटर्न देगा और एक स्टेबल तरीके में देगा। तो पहले जरूरत है कि आप ये डिसाइड करें कि आपका गोल क्या है, आपको पैसों की आवश्यकता कितने सालों में होगी, कितने दिनों में होगी, और आपका क्या रिस्क एपेटाइट है और उस हिसाब से फिर आपको एक सही टाइप का फंड चूज करना चाहिए।
दिल्ली से योगेश शर्मा हमारे साथ हैं। योगेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हेलो योगेश जी, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं?
जी हाँ, नमस्कार आपको।
जी अपना सवाल पूछें।
जी सवाल तो ये है कि एक तो मेरा सवाल ये है कि एफडीएल यूज करते थे एमरजेंसी फंड के, बट लिक्विड फंड आने के बाद में और डेट फंड आने के बाद में क्या एफडी का कुछ पोर्टफोलियो में आपके हिसाब से जगह बचती है, गुंजाइश बचती है अभी भी?
सो कंपैरिजन बिटवीन लिक्विड फंड्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स।
देखिए पहले इन दोनों का टैक्स ट्रीटमेंट अलग अलग होता था, लेकिन अभी कुछ समय पहले पिछले साल टैक्स ट्रीटमेंट चेंज होने के बाद एक डेट फंड और एफडी का टैक्स ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम हो गया है। लेकिन तब भी जो एक डेट फंड है उसमें आपको, चाहे वो लिक्विड फंड हो आपका या और कोई सा डेट फंड, जो एक सबसे फेवरेबल बात है टैक्स की कि वहां पर आपका जो टैक्स लाइबिलिटी है वो डिफर हो जाती है। एफडी में क्या होता है कि आप भले ही 3 साल की एफडी कराए, आपने उसमें क्यूमुलेटिव ऑप्शन लिया हो कि जो भी इंटरेस्ट हो रहा है वो आप एंड में ही लेंगे, लेकिन जैसे जैसे हर साल वो इंटरेस्ट अक्रू होता है आपको उस पर टैक्स देना पड़ता है। म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ नहीं होता। म्यूचुअल फंड में आप जब बेचेंगे आपको तभी टैक्स देना है, वो चाहे 1 साल बाद हो, चाहे 10 साल बाद हो, चाहे 15 साल बाद हो। तो सबसे बड़ा जो एक बेनिफिट है वो यहां पे आ जाता है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी डिफर हो जाती है। दूसरा जो एक बेनिफिट है वो ये हो जाता है कि आपको फिक्स डिपॉजिट करते हुए एक सर्टेन टाइम पे कमिटमेंट देना पड़ता है, चाहे वो 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, और उस तय समय से पहले अगर आप किसी कारण अपना फिक्स डिपॉजिट प्री मच्योर करते तो इंटरेस्ट रेट पे 0.5% से 1% की पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाती है, जिससे कि आपका इंटरेस्ट और कम हो जाता है। वहीं जब ही आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं आपको कोई सा भी ऐसा एक टाइम का कमिटमेंट नहीं देना पड़ता, तो वहां पे अगर आपने मान लीजिए इन्वेस्ट करते सोचा हो कि आपको ये 3 साल बाद पैसा चाहिए, लेकिन किसी कारणवश आपको 6 महीने बाद ही निकालने की आवश्यकता पड़ गई, तो आपको किसी भी टाइप की पेनल्टी नहीं पड़ेगी। तो देखिए सबसे बड़े जो दो बेनिफिट है वो यहां पे है। बाकी लिक्विड फंड आमतौर पे और एक शॉर्ट ड्यूरेशन फंड बल्कि फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा सा ज्यादा आपको रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं, बट एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये बहुत ज्यादा लिक्विड फंड के केस में बहुत ही मीनिंगफुल डिफरेंस शायद ना बनाए, बट एक लिक्विडिटी और टैक्स डिफरमेंट बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है इनके फेवर में।
राइट, नाउ लेट्स गो अक्रॉस टू कोलकाता वेयर वी हैव विकास जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू मार्केट मंत्रा।
नमस्ते मार्केट मंत्रा
जी।
एसबीआई लार्ज कैप इक्विटी फंड अगले 7 साल से मैं निवेश हूँ, 200% से ज्यादा रिटर्न दे रहा है, तो अभी इसे और भी लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ। इसमें एक एसआईपी स्टार्ट किया, वो अगले 6 महीने से स्टार्ट हुआ।
राइट, सो दिस इज रियली इंस्पायरिंग, 200% रिटर्न
हर दिन 7 साल का।
हाँ, ओवर अ पीरियड ऑफ 7 इयर्स।
सो देखिए पहली बात तो आई वुड से कि कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आपके इन्वेस्टमेंट से इतना अच्छा रिटर्न आपको मिल रहा है। इस वक्त मार्केट्स पीक पे है और अगर कोई थोड़े लंबे समय से निवेशक है तो आमतौर पे उनको एक अच्छा रिटर्न मिल रहा है। सो बाकी रही बात कि आपको इसका भी क्या करना चाहिए, आपको कंटिन्यू करना चाहिए या आपको ये पैसा निकाल लेना चाहिए, तो यहां पे मैं कहूंगा कि सबसे पहले देखें कि आपको वाकई में क्या उस पैसे की जरूरत है अभी। अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो केवल इस वजह से मत निकालिए कि हाँ प्रॉफिट हो गया है और मैं वो प्रॉफिट बुक कर लेता हूं। बट जैसे कि मैं अभी कुछ 2-3 क्वेश्चन पहले बात कर रहा था असेट एलोकेशन की, तो ये जरूरी है कि आप अपना एक असेट एलोकेशन चेक कर ले, और अगर आपका जो एक इक्विटी पोर्टफोलियो का या इक्विटी पोर्टफोलियो के अंदर मिड कैप्स का भी एलोकेशन ज्यादा हो गया तो उसको रीबैलेंस करना आप कंसिडर कर सकते हैं।
जी आइए अगली खबर पर नजर डालते हैं। इस महीने विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों पर फिर से भरोसा दिखाते हुए 21 जून तक देश के शेयर बाजार में 12,170 करोड़ रुपए का निवेश किया है। नीतियों में सुधार की संभावना और अर्थव्यवस्था में लगातार विस्तार के अनुमानों से विदेशी निवेशकों में उत्साह है। जून के तीसरे सप्ताह तक ऋण बाजार में 10,575 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आ चुका है। इससे पहले अप्रैल में एफपीआईज ने भारतीय शेयर बाजार से लगभग 25,586 करोड़ रुपए और ऋण बाजार से 8,700 करोड़ रुपए निकाले थे। उससे पहले के आंकड़ों पर गौर करें तो विदेशी निवेशकों ने मार्च में भारतीय पूंजी बाजार से 35,098 करोड़ और फरवरी में 1,539 करोड़ रुपए का निवेश किया था, जबकि जनवरी में उन्होंने 25,743 करोड़ रुपए निकाले थे। विदेशी निवेशक 2024 में अब तक भारतीय शेयर बाजार से कुल 11,194 करोड़ रुपए निकाल चुके हैं।
वेल लेट्स कंटिन्यू विद फोन कॉल्स एंड गो अक्रॉस टू जयपुर वेयर वी हैव जितेंद्र जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू मार्केट मंत्रा।
हाँ सर, थैंक यू। अच्छा सर, ये बताया कि एक कोटक अपॉर्चुनिटी फंड है, उसके बारे में आप बताया। मैंने थोड़ा पढ़ा तो उसमें मालूम पड़ा कि भाई बाई बैक और कोई मैनेजमेंट चेंज इस टाइप का कुछ होता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट होगा। आप उस पर थोड़ा सा विस्तृत प्रकाश डालें। और एनपीएस में कोई नया फंड चालू हुआ है, 9 जुलाई से चालू होगा, बैलेंस एडवांसेस टाइप का 50-50-50, तो हमारे ख्याल से सर ये तो मतलब म्यूचुअल फंड जैसा मिक्स हो जाएगा, हॉटस्पॉट हो जाएगा काफी अगर ऐसा एनपीएस में होता है तो।
देखिए, जो एनपीएस के आप नए फंड की बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा अलग है। बेसिकली होता है कि एनपीएस में आपकी दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होती है, ऑटो और एक्टिव। तो ऑटो ऑप्शन में आपकी एज के हिसाब से एक असेट एलोकेशन प्री डिफाइंड होता है, जिसमें कि इन्वेस्टर की एज के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली घटता बढ़ता रहता है। तो उसमें पहले तीन प्लान्स थे, एक था आपका अग्रेसिव, कंजर्वेटिव और मॉडरेट। तो जो मॉडरेट प्लान था उसमें आपको 50-50 का एलोकेशन मिलता था 35 साल की उम्र तक। अब 35 साल की उम्र के बाद जो आपका इक्विटी एलोकेशन था वो हर साल कम होने लगता था और डेट का बढ़ने लगता था। ये जो एक नया फंड इनका लॉन्च हो रहा है ऑटो में, ये बैलेंस्ड लॉन्च हो रहा है, इसमें क्या होगा, ये जो 50-50 का एलोकेशन पहले 35 साल तक रहता था ये 45 साल की उम्र तक रहेगा। तो अभी वो एक तरीके से आपको एडिशनल 10 साल का इक्विटी एलोकेशन मिल जाएगा। तो कंपैरेटिवली ये फायदेमंद रहेगा, इसमें आप ज्यादा पैसा लंबे समय के लिए, क्योंकि इक्विटी एलोकेशन ज्यादा रहेगा तो आप ज्यादा अक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट वहीं पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जो एक एक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होती है वहां पे आप यही एलोकेशन इक्विटी में 75% तक रख सकते हैं बिना किसी एज की रिस्ट्रिक्शन के। तो मेरे हिसाब से अगर आपके रिटायरमेंट में 5-7 साल या उससे अधिक है तो ये बेहतर रहता है कि आप मैक्सिमम एलोकेशन 75% का दे इक्विटी में। तो उसके लिए अभी भी एक्टिव चॉइस लेना ही बेनिफिशियल रहेगा। बाकी एनपीएस म्यूचुअल फंड से भले ही अंदर काफी हद तक थोड़ा बहुत ये चीजें सेम होती है, बट जो एक मेजर एडवांटेज होता है वो इस चीज का होता है कि आपका एक तो बहुत ही लो कॉस्ट रहता है यहाँ पे, जो कि म्यूचुअल फंड का कंपैरेटिवली एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा रहता है। प्लस यहां पे वर्चुअली लॉक इन पीरियड 60 की एज तक का होता है, जो कि आपको अपनी रिटायरमेंट के लिए, अगर कोई भी ऐसा इन्वेस्टर है जो बहुत डिसिप्लिन नहीं है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है, क्योंकि वो बीच बीच में पैसे इतनी आसानी से निकाल नहीं पाते। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड में एक जो बहुत अच्छी चीज होती है, उनके इक्विटी प्लान्स में आप मिड और स्मॉल कैप में भी निवेश कर सकते हैं। एनपीएस में जो इक्विटी प्लान्स है उनके लिए मैंडेट है कि वो सबसे बड़ी 200 कंपनीज के आगे जा ही नहीं सकते, सिर्फ वो टॉप 200 लार्ज कैप कंपनीज में रह सकते। उससे होता यह है कि वो थोड़ा स्टेबल रहता है, लेकिन लंबे समय में अगर आप थोड़ा सा एक मिड और स्मॉल कैप का एक्सपोजर डाल दें तो रिटर्न्स और भी बेहतर होने की क्षमता रहती है।
जी, अगले कॉलर हैं मुंबई से गोपाल। गोपाल, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
जी मार्केट मंत्री जी, नमस्कार।
नमस्कार
सर, ये अभी एक नया मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस फंड आया है, काफी डिमांड है, लेकिन सर डिफेंस स्टॉक ऑलरेडी सब हाई पे है, तो ये नया जो अभी मोतीलाल ओसवाल का जो डिफेंस फंड है इसमें म्यूचुअल फंड में एंट्री करना अच्छी बात है क्या करंट में?
देखिए, आपने एकदम सही बात कही, ये जो डिफेंस फंड है अभी, इसके जो अगर आप स्टॉक्स देखेंगे, ये बेसिकली एक डिफेंस इंडेक्स को, निफ्टी का जो है उसको रेप्लीकेट करेगा। उस इंडेक्स में टोटल 15 स्टॉक्स है आज की तारीख में, जिसमें से जो आपके टॉप 10 स्टॉक्स है वही अकेले आपका अराउंड 94% पोर्टफोलियो बना रहे हैं। और इसमें काफी ज्यादा, लगभग आधे से ज्यादा पोर्टफोलियो जो स्टॉक्स को एलोकेटेड है वो आपके पीएसयूज है। अब इन पीएसयूज में देखिए कुछ समय से रैली भी रही है और पीछे कुछ ही समय पहले एक एचडीएफसी का भी डिफेंस फंड आया था जिसने कुछ 3-3.5 हजार करोड़ के आसपास लगभग पैसे इकट्ठा करे थे, तो इन स्टॉक्स में काफी पैसा गया, उससे भी कुछ इन स्टॉक्स में ऊपर बढ़े हैं। तो ये चीजें थोड़ा सा एक क्वेश्चनेबल है जैसे कि आपने कहा, बाकी एक अपना डाइवर्सिफाइड अप्रोच रखिए। आप अगर इस सेक्टर पे राइड करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा एलोकेशन मत दीजिएगा इसको, कुछ ऐसे देखिएगा कि अगर आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि ये वाले जो स्टॉक्स है ये आमतौर पर एक फ्लेक्सी कैप फंड में इतने आसानी से देखने को नहीं मिलते, होते हैं लेकिन उनका एलोकेशन बहुत कम होता है। तो आप इसको उस नजरिए से देखिए कि अगर आपको इन स्टॉक्स में एक्सपोजर लेना है लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़ा ज्यादा, या एक क्वासी पीएसयू टाइप फंड में लेना है तो एक थोड़ा सा मामूली सा एलोकेशन दे सकते हैं, वरना आप अपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में स्टिक करिए।
वेल, वी हैव देवांजल ज्वाइनिंग अस फ्रॉम कोलकाता, बट बिफोर वी टेक हिज कॉल लेट्स टेक अ लुक एट सम ऑफ द न्यूज आइटम्स दैट वी आर ट्रैकिंग फॉर यू दिस इवनिंग। The Bureau of Indian Standards has introduced two new standards, IS 18590-2024 and IS 18606-2024, to enhance the safety of electric vehicles. These new BIS standards are designed to ensure that the critical components of EVs, the powertrain, meets the stringent safety requirement. These standards also place a strong emphasis on the safety and performance of batteries, ensuring that they are both powerful and secure. The newly introduced standards are for electric vehicles in the L, M and N categories. This initiative is a significant step towards reinforcing the reliability and safety of electric powertrains and batteries, crucial components that define the efficiency and security of electric vehicles. Now let's go across to Kolkata. We have Devanjal joining us from there. Good evening and welcome to Market Mantra. Shoot your question quick. We are moving towards the end of the program.
SBI Multicap Fund.
Mm-hmm.
10 साल के लिए रखना चाहते हो, अभी 2 साल हो गए, कैसा फंड है?
देखिए एसबीआई मल्टीकैप फंड अगर आप 10 साल के हिसाब से निवेश करना चाह रहे हैं तो अच्छा फंड है, आप उसमें बने रहिए, बाकी उसमें एकदम ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है। बाकी मैं यही कहूंगा कि इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आप उसमें अभी भी निवेश कर रहे हैं तो एसआईपी के थ्रू करिए, और बीच में हो सकता है कि जब मार्केट नीचे गिरे तो एक आम डाइवर्सिफाइड फंड से थोड़ा ज्यादा गिरे, क्योंकि उसमें मिड और स्मॉल कैप का एक्सपोजर एक आम फ्लेक्सी कैप फंड से ज्यादा रहेगा, तो तब आपको घबराना नहीं है, आपको उसमें बने रहना है लंबे समय के लिए।
या एंड आकार, फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर लिसनर्स, मेनी टाइम्स देयर इज अ कन्फ्यूजन बिटवीन मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप, सो हाउ डज दीज टू डिफर?
See, so a multi-cap fund has a mandate of maintaining at least 25% of their portfolio each in large, mid and small caps, whereas a flexi-cap fund does not have any such restriction. Okay. So, I mean, this is the major difference. So, at any point of time, a multi-cap fund would have at least 50% of its portfolio in mid and small caps. Whereas, on the other hand, if we look at the portfolio, flexi-caps are usually around 70% in large caps, and the remaining is maintained in mid and small caps. That's it. Their fund managers are completely free to, you know, oscillate between any market capitalization range.
जी आकार, एक और बात अभी पिछले कॉलर के सवाल से पैदा हुआ कि ये 10 साल के लिए रखना चाहते हैं किसी फंड को, तो आमतौर पर अगर हम लंबे समय के लिए पैसे लगा रहे हैं तब भी हमें भी खुद फंड को रिव्यू करना चाहिए, और कितने कितने समय पर करना चाहिए?
देखिए आप उसको साल में एक दफा या 1.5-2 साल में एक दफा रिव्यू करिए, और एक रिव्यू ऐसे करिए कि जो उस कैटेगरी के बाकी के फंड्स हैं उनके साथ कंपेयर करिए,
उसका परफॉर्मेंस कैसा है।
बिल्कुल
राइट
जी।
वेल दैट्स इट, वी विल हैव टू कॉल इट अ डे। वी वुड लाइक टू थैंक ऑल आवर कॉलर्स फॉर देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन टुडेज प्रोग्राम,
एंड आकार मार्केट मंत्र में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू।
एंड बिफोर वी क्लोज, अ क्विक लुक एट द टॉप स्टोरीज। GST Council recommends uniform rates of 12% on all steel, iron and aluminium milk cans. Also, no GST on some common man services provided by Indian Railways. Foreign investors infused more than 12,000 crore rupees in Indian equities till the third week of June. And the Bureau of Indian Standards introduces two new standards to enhance the safety of electric vehicles. With that, we come to the end of this edition of Market Mantra. Thank you so much for joining us. Goodbye.
मौजूद सरकार।